एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, अगर एक एक की प्यार की कहानी सुने तो एक एक भागवत तैयार कर सकता है। ऐसा है कि नहीं? हर एक की कहानी बड़ी वंडरफुल और यूनिक है। मधुबन भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा आकर्षण उन क्लासेस की होती है जिनमें मम्मा बाबा के साथ के अनुभव है, होता है ऐसा कि नहीं? और कितनी बार भी वो कहानियां सुनी है लेकिन दोबारा सुनने को जी चाहता है, अच्छी लगती है, अपनी लगती है। और कुछ अनुभवों में अलग सी प्रेरणा भी होती है, सीधा जाकर के बुद्धि को अटैक नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो कनेक्शन है वो बुद्धि से ज्यादा दिल से है, दिल को छू जाते हैं। क्लासेस सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, बुद्धि को टच होती है लेकिन अनुभव सीधा दिल को छू जाते हैं। भाई का भी कुछ ऐसा ही विशेष अनोखा अनुभव है, आप सब सुनेंगे ही। लेकिन कभी कभी सुन करके लगता है कि बाबा पता नहीं कौन सी मूर्ति को कब से तैयार करना शुरू करता है। मूर्ति से पर्दा एक दिन जरूर हटता है और हमको वो मूर्ति तब दिखाई देती है जिस दिन पर्दा उठ जाता है। लेकिन कभी उसकी गाथा सुने तो ऐसा लगता है कि ये बाबा कब से तैयार करना शुरू करता है, किस किस रूप में तैयार करता है। और जिस समय हमको लगता है कि इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं हो सकता, हम बाबा से कंप्लेन करते हैं, वो जैसे मुस्कुराकर हमको अंदर ही अंदर किसी विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहा होता है। बाबा की एक मुरली में बाबा ने कहा है कि बाबा को हरेक की जन्म पत्री पता है। भले साकार मुरली में कहेंगे मैं नहीं जानता कुछ भी, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? हरेक की जन्म पत्री जानता है। तो ऐसे ही भाई की भी विशेष जन्म पत्री है, विशेष अनुभव है, कैसे बाबा ने उनको ढूंढा या उन्होंने बाबा को ढूंढा और किस प्रकार से बाबा आज उनको एक विशेष इंस्ट्रूमेंट बनाकर बेहद की सेवा कर रहे हैं। हमारा विजन हद का होता है लेकिन उसका बेहद का होता है और इसलिए उसका प्रोसेस भी बेहद का ही होता है। तो अभी सचिन भाई का अनुभव सुनेंगे। सबने रेस्ट किया ठीक से? भोजन किया ठीक से? सब फ्रेश हैं? जरा एक बार बता दे ऐसा करके, सब ठीक? फोन साइलेंट मोड पे कर दिया? करते नहीं तो चेक कर लें एक बार ही, साइलेंट मोड पे करते, ट्रैफिक कंट्रोल बंद करते।
ओम शांति। एक सूफी संत ने लिखा है कि मैंने भगवान को 40 साल तक ढूंढा और अब 40 साल के बाद मुझे भगवान मिले। मैं ये सोचता था कि मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं, परंतु आज मुझे ये पता चला कि मैं उसे नहीं ढूंढ रहा था, वो मुझे ढूंढ रहा था। कहां ढूंढना ये भी तो नहीं पता था, ढूंढने का भी अभिमान था कि मैं ढूंढ रहा हूं। और जब एक दिन वहीं चला गया वो अहंकार, तब वो मिल गया। हम में से हर एक को बाबा ने स्वयं ढूंढा, हम में से हर एक को उसने स्वयं आकर चुना। उसके पास वह दृष्टि थी आर पार देख लेने की, कौन क्या है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं, गीता में लिखा है। ऐसे ही जैसे बहन ने कहा कि हर एक की जीवन गाथा गंगा की जैसी है जो सागर में मिलती है, तो हमारा भी अलौकिक जन्म सीधा अव्यक्त बाप दादा के द्वारा हुआ, बाबा की दृष्टि और बोल के द्वारा। स्थान मधुबन डायमंड हॉल, तारीख 30 नवंबर 2003, समय तिथि तारीख सहित। श्याम का सबसे पहली अव्यक्त मुरली हमने अव्यक्त बाप दादा के द्वारा सुनी। कैसे जो हम देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ तो बहुत आश्चर्य होता है। हमारा लौकिक जन्म महाराष्ट्र विदर्भ दरियापुर अमरावती के पास एक छोटा सा गांव है, वहां हुआ। फिर हम वहां से नागपुर गए, नागपुर में हम 7th स्टैंडर्ड तक थे, फिर वहां से अमरावती आए 12th स्टैंडर्ड तक। तो पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जीवन की ये धारा कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए कि जिसने सबके सब पूरा के पूरा जीवन ही बदल दिया। ये हम जरूर कह सकते थे कि कहते हैं कि 12वीं तक जो भी हमारा जीवन था संपूर्ण अंधकार, अभी अंधकार ही लगता है वो जो कुछ था। 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम पूरी की, पर एक बात थी कि बचपन से हमने खुद को एक दृश्य देखा था कई बार कि बहुत सारी पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों के बीच हम तपस्या कर रहे हैं। तो 12वीं की बोर्ड एग्जाम पूरी हुई और एग्जाम के बाद जैसे सभी बच्चे खेल कूद और मस्ती और वो सब करते हैं, हम भी वो सब कर रहे थे। तो हमारे पिताजी, लौकिक पिताजी, हमारे लिए कुछ किताबें लेकर आए क्योंकि वो चाहते थे हम डॉक्टर बने। तो महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम थी और एक सेवाग्राम की। तो ये जो सेवाग्राम की एंट्रेंस एग्जाम थी, वहां पर मेडिकल कॉलेज है और उनकी अपना एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनकी अपनी एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट होता है, गांधीयन थॉट्स। जिसमें महात्मा गांधी की जीवन कहानी और उन्होंने जो कुछ किया था उसके विषय में। तो हमारे पिताजी चाहते थे कि हम डॉक्टर बने और इसलिए वो किताबें लेकर आए। वो 5-6 किताबें थी, उसमें एक बुक थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के प्रयोग। तो वो जो किताब थी वो भी फुल वर्शन नहीं थी, एब्रिज्ड, संक्षिप्त, छोटा थोड़ा। तो वो किताब हम पढ़ने लगे और जैसे जैसे किताब पढ़ने लगे साइलेंट होते गए और फिर एक ऐसा साइलेंस आ गया कि हमने बोलना बंद कर दिया। और नेक्स्ट 6 मंथ्स, 6 मास किसी से कोई बात नहीं की। वो मौन इतना गहरा था कि जो लोग बोलते थे और बात करते थे हमको लगता था ये बात क्यों करते हैं। तो हम साइलेंस में चले गए। हमारे पिताजी को इतनी चिंता हुई कि उनको लगा कि इसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अचानक बोलना क्यों बंद कर दिया, कोई बीमारी तो नहीं आ गई। परंतु वो बुक पढ़ते 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 लेखक ने उसमें जो कुछ लिखा हमको लगा वो हमारे जीवन का है। उन्होंने लिखा मैंने ये किया, फिर झूठ बोला, फिर पश्चाताप किया। उन्होंने लिखा मैंने मांसाहार किया, पश्चाताप किया। उन्होंने लिखा मैंने कुसंग किया, बीड़ी पी, फिर पश्चाताप किया। और जो कुछ उन्होंने लिखा था हमको लगा ये तो मैं हूं, और जैसे इन्होंने पश्चाताप किया मुझे भी पश्चाताप करना है, मैंने भी ऐसे ही पाप किए। ऐसा हमने कुछ किया नहीं था, पर हमको लगा कि जैसे ये लेखक ने किया है वैसा मुझे भी करना है। और एक दूसरी बहुत ही फटी पुरानी सी किताब थी हमारे घर में, जिसके पहले कुछ पेपर्स पेजेस नहीं थे, लव ऑफ गॉड, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स। और वो किताब हमने पढ़ी और उसमें लेखक का जो प्रेम था परमात्मा के प्रति, ऐसा उसने वर्णन किया था, ऐसा उसमें वर्णन था उस प्रेम का कि हमने ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा था। उसने लिखा था कि परमात्मा प्रेम का तीर मेरे हृदय में चुभा है, द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव, रक्त बह रहा है और ये घाव लाइलाज है, ये जो वुंड है अनहीलिंग है और मैं क्या करूं। तो हम एकदम से मौन हो गए। पहली बार जीवन क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, एकदम से सारे प्रश्न आंखों के सामने आ गए। एक बार हम साइकिल लेकर कहीं घूम रहे थे तो एक जगह देखा गीता प्रवचन, चिन्मय मिशन की कुछ सन्यासिनी वहां आई थी और वो गीता पाठ चल रहा था, राजविद्या राजगुहम 9वां अध्याय, और हम वहां जाके बैठ गए और पहली बार वहां पर गीता सुनी। तो अंदर ही अंदर हम खो गए। ऐसा वो मौन था कि उस मौन में हमारे पास कोई भी ज्ञान नहीं था, ना लौकिक ना लौकिक ना लौकिक कुछ खास, परंतु हम जो सोचते थे उस समय वो होता था। पर हम चुप थे और मौन थे। और एक दिन अचानक फिर वो रिजल्ट आ गया एमबीबीएस 12th स्टैंडर्ड का बीच में, और उसमें हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। उस समय ग्रुप होते थे पीसीबी पीसीएम मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के ग्रुप में 97% थे और मैथमेटिक्स में 97 थे, बायोलॉजी में 95 पॉइंट कुछ। तो हमने देखा था हमारे घर में सब इतनी खुशियां मना रहे हैं, परंतु उस समय हम जैसे डिटैच हो गए उस रिजल्ट से, जैसे किसी और का है, मुझे कुछ इससे लेना देना नहीं है। और ये भी देखा कि ये लोग खुश तो हुए हैं पर दुखी भी है, क्योंकि दुखी इसलिए है क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, पर सुखी इसलिए थे कि जिनका मेरिट लिस्ट में नाम था उनका हमारे बेटे में ग्रुप में हमारे बेटे को ज्यादा परसेंटेज है। तो हम साक्षी होकर देख रहे थे मनुष्य का स्वभाव कभी संतुष्ट नहीं होता है। कुछ मार्क्स से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, तो हमारे पिताजी ने यह निर्णय लिया कि हमको डॉक्टर बनाना है। हमारा कोई निर्णय था ही नहीं। क्योंकि एकदम एक नव प्रकाश, कुछ नई किरण आ गई थी अंदर, जिससे ये सारा कुछ बहुत छोटा लगने लगा था। और फिर हमारे पिताजी ने एडमिशन ले लिया। सबसे पहले हमको नागपुर लेके गए, वहां पर आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में वहां पर एडमिशन थी। तो उस हॉल में हम बैठे थे और अभी बहुत समय था एडमिशन के लिए, हमारा नंबर आने के लिए। तो हमने सोचा थोड़ा घूम के आते हैं। तो हम वहां जो हॉस्पिटल है सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसके अंदर घुस गए और एक वार्ड से दूसरे वार्ड और दूसरे वार्ड से तीसरे वार्ड जाने लगे। और वहां जाते जाते जो इतना सारा दुख, इतना सारे पेशेंट्स एक वार्ड एक ही बेड पर, कहीं कहीं दो दो बच्चे पीडियाट्रिक वार्ड कहीं नीचे, और एकदम से हमको आंसू आ गए और हमने वहीं पर यह निर्णय किया लिया कि यदि हम डॉक्टर बने तो अपना संपूर्ण जीवन इन्हें दुखी जिनका कोई नहीं है, द लॉस्ट द लोवेस्ट एंड द लोवलीएस्ट जे कारंजले कांजले त्यासी मने जो आपुले, इन्हीं के लिए अर्पण करते हैं। अभी हम बने नहीं हैं पर उसके पहले ही। फिर हमारे पिताजी वापस आए और ढूंढते ढूंढते हमको और लेके गए, क्या कर रहे हो यहां। और फिर एडमिशन हुई, उसमें भी जितने परसेंटेज हमको थे उस पे विदर्भ में कम से कम 7 से 8 लोग थे, उसी परसेंटेज पर पॉइंट का अंतर था, 95.92 95.91 पॉइंट में। तो उस पॉइंट के हिसाब से एडमिशन हो रही थी। तो हमारी एडमिशन हुई यवतमाल मेडिकल कॉलेज वीएनजीएमसी। तो हम वहां पहुंचे। उस मेडिकल कॉलेज में हम उस स्थान पर फर्स्ट ईयर तो हमारा हॉस्टल के बाहर, क्योंकि रैगिंग भयंकर। पर हम एक ही मात्र ऐसे स्टूडेंट थे पूरी 50 की बैच में से जो हमेशा छूटता गया। कुछ ना कुछ कारण आता था और छूट जाते थे। फर्स्ट ईयर में जहां हम रहते थे वहीं पर एक शिव मंदिर था, और रोज शाम को जैसे ही वो गीत बजता था, हर हर भोले नमः शिवाय, हम सब कुछ छोड़कर वहां चले जाते थे। और फिर वहीं पर उसी कमरे में बैठकर कुछ कुछ कविताएं लिखना चालू की। एक सीनियर तो हमारे कमरे में पहुंच गया था, पर उसने उसे एक कविता मिली जो रैगिंग पर लिखी हुई थी वो ही लेके चला गया और वो उसने पब्लिश कर दी कॉलेज मैगजीन में। MBBS के 4.5 साल, इंटर्नशिप से पहले तक, ये पूरा 4.5 साल हमारी भगवान की खोज में थे। ऐसा एक दिन भी नहीं था कि जिस दिन हम उसकी खोज में नहीं निकले। हर दिन नए नए सत्संग में, हर दिन नए नए मंदिर में, हर दिन नए नए स्थान पर, हर दिन नई नई किताबें। पर द्वंद्व था एक, एक तरफ मेडिकल और एक तरफ भगवान। इधर मेडिकल का ज्ञान और उसकी किसी किताबों में कोई अध्यात्म की चर्चा नहीं, कहीं पर भी शरीर की एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में आत्मा और परमात्मा इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। दिवस रात्र महायुद्धाचा प्रसंग, अंतर्बाह्य जग आणि मन, द्वंद्व था एक, इधर और इधर, इधर और इधर। बीच में एस्कॉन वाले वहां आए थे, हरे कृष्णा, उनके साथ हम थे कुछ समय। वो कॉलेज में भी आए थे, उनका लेक्चर भी हुआ था उनके स्वामी का कॉलेज में। खोज चालू थी, फिर हम हॉस्टल में भी गए बाद में। हमारे हॉस्टल के पीछे एक मंदिर था, श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर। MBBS की बहुत सारी पढ़ाई उसी मंदिर में बैठकर हमने की। तो ये जो पूरा समय था 4.5 ईयर्स इंटेंस सर्च ऑफ गॉड, और फिर बीच बीच में हम छुट्टियों में घर आते थे, 2 घंटे की दूरी पर था बाय रोड। हमारी लौकिक बहन थी, है अभी भी, तो वो भी डॉक्टर थे, हमसे 1 साल बड़ी, और वो वहीं थी अमरावती में, हम उधर थे यवतमाल। और वो उनके कॉलेज में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे मैडम, जो कि ज्ञान में थे, और वो क्लास लेते थे राजयोग का 8 से 9, और उसके बाद में मेडिकल कॉलेज चालू होता था। उस पूरी 100 की बैच में से हमारी एक बहन ही ज्ञान में आ गई। वो सेंटर गई और उसको लगा बस यही मेरा घर है, यही सब कुछ है। और फर्स्ट डे से उसने सारी धारणाएं करना चालू कर दी, और जैसे ही धारणा की, वो घर पे उसने माता जी के हाथ का खाना बंद कर दिया, और फिर बहुत सारे झगड़े होने लगे। और फिर जो किताबें उसने लाई थी, हमारे पिताजी ने सारी किताबें फाड़ दी, और वो लाइट शिव बाबा का फेंक दिया, और उसका सेंटर जाना बंद करा दिया। और ऐसे पीरियड में हम घर आते थे, और घर जब आते थे तो हमारी माताजी को हम भक्ति की बातें सुनाते थे, जो हमने सत्संग में सुनी है, भगवान श्री राम कहते हैं। तो हमारी बहन बीच में से टपक पड़ती थी, अच्छा वो त्रेता वाला राम? हमने कहा त्रेता वाला राम नहीं, भगवान श्री राम बोलो। तो हमको बड़ी दया आती थी, अरे रे बेचारी। तो जब भी घर आते थे द्वंद्व, फिर जाते थे, फिर आते थे। एक बार जब हम आए तो हमने सोचा हमारी बहन का हम कल्याण करके रहेंगे। उसके गीत अजीब थे, जो हमने भक्ति मार्ग में सुने नहीं थे। वाह मेरे भाग मुझे मिले भगवान, झूम रहा मेरा मन मेरा मन, इस तरह के अजीब गीत थे उसके। और उसको कुछ भी बातें पता नहीं थी, ना किसी शास्त्र की बात पता थी, ना कोई धर्म की का उसे कोई ज्ञान था। पर वो कहती थी हम सब जानते हैं। तो हमने भी सोचा इसका भी कल्याण हम करके रहेंगे। तो उसको जबरदस्ती हम 7 दिन तक लेके गए भागवत कथा में, सुबह का सत्र और शाम का सत्र। तो वो वहां बैठकर भी इधर उधर देखती रहती थी भागवत कथा में, जहां पर इतनी कृष्ण लीलाओं का वर्णन हो रहा है, और आते समय कहती थी कि एक मिनट मुझे सेंटर जाना है, बाहर गाड़ी रोकना, और वो अंदर जाती थी, मुरली कुछ पढ़ के वापस आती थी। हम नहीं जाते थे, हम बाहर, हम एक ही बार गए अंदर, और वो भी सबसे पीछे जाके बैठे, और मुरली भी चल रही थी उस समय, और बहन जी संगली पर बैठे थे और कह रहे थे भक्ति है रात और ज्ञान है दिन, और हम बैक पीछे। कम से कम भक्ति की निंदा तो नहीं करो। पर एक बात थी, हम कहेंगे इवन ट्वेल्थ से भी पहले एक बार हमने कुछ ब्रह्मा कुमारियों को आते देखा था, तो उन पर हमने कुछ लिखा था, क्योंकि प्यूरिटी का आकर्षण बहुत ज्यादा था, और हमको लगा ये कौन है, हमको नाम भी नहीं पता था ये लोग कौन है, क्यों पहनी है, पर हमने लिखा जरूर था उनके विषय में कुछ। तो फिर हम अपनी बहन के लिए प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोपाल, इसको भक्ति दो। और वो कहती थी शिव बाबा इसकी बुद्धि का। ताला खोलो। हम कहते थे बुद्धि का ताला, ये कौन सी कैसी भाषा है। वो शब्द भी ऐसे ऐसे बोलती थी कि जो हिंदी भाषा के बाहर के थे। तो फिर से अपनी पढ़ाई में, और वो पढ़ाई में भी ऐसा था हमारा कि हम जैसे बाकी सब लोग पढ़ते थे उस तरीके से नहीं पढ़ते थे। जैसे अभी एग्जाम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लो, उसको पढ़ना नहीं है। हमारा एग्जाम पास करना लक्ष्य ही नहीं था, हमें था कि ये मुझे समझना है। एक बार हमारे कोई रिलेटिव एडमिट हो गए किसी हॉस्पिटल में, और हम तो अभी फर्स्ट टाइम बीबीए स्टूडेंट है, हमारे पिताजी जबरदस्ती लेके गए, मेरा बेटा डॉक्टर है, जाओ डॉक्टर से अंदर जाके बात करो क्लिनिक में। हम नहीं बात करेंगे, हमको तो कुछ पता ही नहीं। बोले जाओ अंदर जाओ, बोलो मैं डॉक्टर हूं, और बात करो और पूछो पेशेंट की तबीयत कैसी है। हमने कहा अरे बाप रे। तो फिर भी हम गए, तो कोई बहुत बड़े फिजिशियन थे, तो हमने कहा वो कैसे है। तो उन्होंने पूछा तुमको क्या पता है। वहां पे किताब रखी थी एक हैरिसन इंटरनल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन। तो उन्होंने कहा तुमने ये पढ़ी है क्या। हमने कहा नहीं, अभी कहां से पढ़े। उन्होंने कहा आई हैव रेड इट 20 टाइम्स, फर्स्ट गो एंड रीड व्हाट इज एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड देन आस्क मी। तो हमको ऐसा जबरदस्त धक्का लगा, तो हम घर गए, और जो छोटी किताबें हम पढ़ते थे मेडिसिन की, डेविडसन, वो सब एक तरफ कर दी, और तब से हमने वो किताबें पढ़ना चालू की जो लोग पीजी में पढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, रेफरेंसेस बुक्स या बड़ी वाली किताबें। और वो पढ़ना मतलब वो तो फर्स्ट रीडिंग ही नहीं होती एग्जाम तक, क्योंकि सबका, जितने स्टूडेंट्स हैं सबका लक्ष्य होता है एग्जाम, ये वी आई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ना है, उसको नहीं पढ़ना है। हमारे लिए ऐसा था ही नहीं, सभी पढ़ना है, फेल हुए तो बहुत ही अच्छा, फिर से पढ़ेंगे। तो एक तरफ तो ये था, और दूसरी तरफ भगवान की खोज, जिसके सामने ये सब व्यर्थ था। पर ये मेडिकल में भी इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि हमने कई जगह पढ़ा हुआ था सर्विस ऑफ गॉड, मैन एज गॉड, शिव ज्ञाने जीव सेवा, मानवता की सेवा करनी है, उसका ये एक माध्यम मात्र है मेडिकल की पढ़ाई। बाकी इस पढ़ाई से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। एमबीबीएस पूरा हुआ, सारे विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए छुट्टियों में, हम नहीं गए। और अब आया सेकंड टर्निंग पॉइंट। फर्स्ट था ट्वेल्थ के बाद जिसमें हम 6 मास तक मौन में चले गए थे। मेडिकल एडमिशन भी उस समय डिले हो गई थी किसी कारण से, इसलिए हमारा मौन वो अनइंटरप्टेड चलता रहा था। एमबीबीएस में थोड़ी हलचल थी पढ़ाई की और भगवान की खोज की, इसलिए हमने सोचा हमको ब्रेक चाहिए और सब स्टूडेंट्स घर चले गए, हम नहीं गए, हम हॉस्टल में ही रहे और फिर से मौन में चले गए। वहां पर अलकाश्री जी आए थे जो अभी भी भारत भर में रामकथाएं करती है, तो उनको हमने सुना निराहार रहकर सुबह और शाम दोनों समय, और फिर से जैसे कि वो ऊर्जा आ गई उस सत्संग से, और फिर इंटर्नशिप चालू हुई एक साल। उस इंटर्नशिप में हर डिपार्टमेंट में कुछ कुछ दिन काम करना पड़ता है, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, कभी 2 महीना, ऑर्थो, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑप्स, सब जगह। और हमारा ऐसा हो गया कि जो अंदर दबा हुआ था कि हमको सेवा करनी है, वो एकदम से बाहर आया, और जो भी वहां पर जितने पेशेंट थे वो जैसे जे जे भेटी जे भूत तेते मानी जे भगवंत, वो स्वयं नारायण है, स्वयं रोगी नारायण, दरिद्र नारायण, वही स्वयं भगवान का अवतार है। और इतना नशा और इतना पैशन, लोगों को लगता था ये कैसा है, ये इतना क्यों, ये बहुत सिंसियर है, सब लोगों की भाषा थी कि ये बहुत सिंसियर इंटर्न है, पर वो हमारी सिंसियरिटी नहीं थी। हमें ना तो किसी से कोई लेना देना था, हमें तो केवल उस पेशेंट से लेना देना था कि जो स्वयं मूर्तिमंत परमात्मा है। फिर हम घर आते थे और हमारी बहन कहती थी हम सबको आत्मा आत्मा भाई भाई देखते हैं, हम कहते थे हम सबको परमात्मा देखते हैं, अब बोलो। तो फिर हम जाते थे। उसी पीरियड में और एक चीज हुई थी, जब हम MBBS में थे तो एक ऐसा ही सत्संग था एक जगह पर, स्वामी मुक्तानंद के शिष्य आए थे, सिद्ध योग जो शक्तिपात करते हैं, और ऐसा क्लास था और क्लास पूरा हुआ, हम भी उठ के जाने लगे तो उस स्वामी जी ने हमको रोक दिया, उन्होंने कहा इधर आओ, और सामने बिठाया, और बहुत समय तक दृष्टि देते रहे। हमने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा शक्तिपात। हमने कहा क्यों, मुझे क्यों, उन्होंने कहा तुम्हारे काम आएगी भविष्य में। तो वहां से फिर इंटर्नशिप भी पूरी हुई, और उस इंटर्नशिप में हम दिन रात 2400 घंटे हॉस्पिटल में, वार्ड में, कैजुअल्टी में, वहीं पर, और सब लोग उस समय पीजी एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करने में लगे हुए थे बाकी इंटर्न्स, क्योंकि कौन करेगा ये सब। और वहां तो हम उस स्ट्रेचर लेके जाने से लेके तो सब कुछ करते थे जो लेबर के काम थे, जो यहां पे जो हॉस्पिटल में होते हैं, वो सब कुछ हम कर रहे थे, क्योंकि ऐसा नशा था कि ये जो है मानव सेवा, माधव सेवा, यही उसकी सेवा है, इसी में वो बैठा है, इसी में वो समाया हुआ है, और इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, यही सर्वस्व है, यही जीवन है। इंटर्नशिप पूरी हुई, सबने कहा तुम पीजी करो, तुम ये करो, तुम वो करो, एंट्रेंस एग्जाम दो, MD करो, विदेश जाओ, ऐसा करो वैसा करो। हमको ये सब किसी भी चीज में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी हमने सोचा अब क्या करें, तो हम अपने भाई के पास गए जो कि नागपुर में था, और वो भी MBBS में था, सेकंड MBBS। हम तीनों ही डॉक्टर है, एक बहन, हम और छोटा भाई। तो उसके कमरे में हम बैठे और सोचा कि वहां बैठ के एंट्रेंस की एग्जाम की पढ़ाई करेंगे। वहां लाइब्रेरी है GMC नागपुर में, बहुत बड़ी, तो वहां हम जाने लगे। 1 या 2 मास गए और फिर से हमारा भटकना चालू हुआ, थर्ड टर्निंग पॉइंट, और उसके कमरे में बैठे बैठे हम फिर मौन में चले गए, और ये जो मौन था सबसे गहरा था। हर दिन नए नए सत्संग, हर दिन नई नई किताबें, सारे सारे रोमन कैथोलिक सेंट, सेंट जॉन, सेंट बर्नार्ड, सेंट असीसी से लेकर अरविंदो, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, माता अमृतानंदमय, ऋषिकेश योगा सत्संग सोसाइटी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ढेर सारी किताबें, वो नागपुर में बर्डी है वहां पे पुरानी किताबें मिलती है बहुत सस्ती, 10 रुपए में, जो किताब मार्केट में 500 रुपए की वो 5 रुपए में, 10 रुपए में ऐसी मिलती थी। तो हम किताबें लेने लगे और सारे दिन भर खोज, आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, आज इस रामकथा में, कल उस रामकथा में, आज इस भागवत में, कल उस भागवत में, और वो भागवत सुनते सुनते और वो कथाएं सुनते सुनते हम वहीं बैठकर आश्चर्य हो जाते। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि हम जैसे गिर गए वहां पर। रामनवमी थी, एक बार वो रथ बनाते हैं वो खींचते हुए हम इतना दूर निकल गए थे एक बार कि मेडिकल कॉलेज एक तरफ रह गया और वो लेके जाते जाते रात हो गई, आने के लिए कुछ नहीं था, तो हम उधर ही जमीन पर सो गए थे। और फिर एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते रामकृष्ण मठ है वहां पर धनतोली में, वहां पहुंचे और वहां जाकर शाम को बैठ गए। और जैसे ही बैठे वहां पर, वो संध्या आरती चालू थी, खंडन भव वंदन वंदितो माए, वो मृदंग, वो सन्यासी और वो एक विशिष्ट अगरबत्ती की खुशबू, और वहां हम बैठे और एकदम अशरीरी हो गए। ऐसा गहरा अनुभव कि जो कभी नहीं हुआ। फिर हम दूसरे दिन फिर गए, फिर गए, फिर रोज रोज जाने लगे, सारे दिन भर भटकना, अनेकों मंदिरों में, अनेकों सत्संगों में। एक बार तो एक सत्संग गुजराती में चालू था, उसमें भी 3 दिन हम गए, क्योंकि हमें यह पता था ये भगवान की कथा है, भाषा कोई भी हो। और उस रामकृष्ण मठ में रोज जाते जाते वहां पर 2 किताबें हैं, एक की है, 2 पार्ट है उसके, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण वचनामृत, उसको पढ़ना चालू किया। जितने लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी, आधे से ज्यादा सन्यासी हो गए। ऐसी उसमें वैराग की बातें हैं, तो वो पूरा किया। धीरे धीरे सब कुछ फिर से मौन। हमारे भाई को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, वो सुबह कॉलेज जाता था, शाम को लाइब्रेरी, और हम उसी के कमरे में थे, और उसे कुछ पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। सारे दिन भर मौन और गहन चिंतन और खोज। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और उस बारिश में हम पहले तो वो स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र पढ़ा, स्वामी निखिलानंद के द्वारा लिखा हुआ, और फिर इच्छा हुई कि उनका कंप्लीट वर्क्स जो है 8 वॉल्यूम्स वो पढ़ना है। ऐसी बारिश में हम गए थे उस मठ में, पैसे थे नहीं कहीं से जमा कर कर, और वो 8 वॉल्यूम्स लेकर आए थे। और वो पढ़ते पढ़ते वो जो भाषण, हमको लगा था ये सब हमको पहले ही पता है, और वहां हमने एक दृश्य देखा था। वो दृश्य ऐसा था कि हम सम्मुख हैं और हमारे सामने सारा विश्व है, और हम कुछ बोल रहे हैं, और वो परमात्मा संदेश है, और वो सारी संसार की आत्माएं सम्मुख है, और वो ऐसा देखा एकदम जैसे रियल है। और वो पढ़ के पूरा हुआ। चिन्मय मिशन में गए और जितनी संस्थाएं थी वहां पर नागपुर में, और जितनी किताबें थी और जितने धर्म थे, फिर धर्मों में जाना चालू किए। हमारे भाई ने कमरा बदला, वो जहां जिस कमरे में रहता था उसके घर मालक जो थे वो सत्य साई बाबा के भक्त थे, फिर उन्होंने हमको वो सारी किताबें दी, और हमने एक दिन रात में सत्य साई बाबा को देखा। और फिर हमारे भाई का जो कमरा था उसके बाजू में एक चर्च था, फिर हमने सोचा अभी हमें ये साधना करनी है, हमने हिंदू धर्म को बाजू में रख दिया और उस चर्च में 3 मास तक गए। वहां सब कुछ हिंदी में होता था, तन मन मुझे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि यीशु के द्वारा उद्धार पाना है, बहुत अच्छे अच्छे गीत थे। तो वो फादर हमको रोज देखते थे, और उन्होंने एक दिन बुलाया, इधर आओ, और उन्होंने कहा देखो हिंदू धर्म में राम जो है ना उसने रावण को मारा, कृष्ण जो है ना उसने कंस को मारा, जीसस क्राइस्ट ने किसको मारा क्या? इधर आ जाओ। पर हम इतने जल्दी फंसने वाले नहीं थे। वहां से बौद्धिस्टिक टेम्पल्स, विपाशना, श्री श्री रविशंकर, अलग 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 जो 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 मिलते गए सबको स्टडी करते गए। हमारे पिताजी एक बार इधर आए थे गुजरात बड़ौदा, वहां से रायचंद भाई की कुछ बुक्स लाए, वो फिर हमने पढ़ी। फिर किसी ने कहा तुम ना वहां जाओ, वो एक ताजुद्दीन बाबा है, फिर हम वहां गए। फिर किसी ने कहा तुम ना वो वहां जाओ गुलाब महाराज जो जन्मांध है उनको पढ़ो, फिर हम वहां गए। फिर एक किसी ने कहा लहनू जी महाराज, फिर हम वहां गए। हर दिन नई खोज, और ऐसा करते करते एक दिन लगा कि अब हमको ब्रह्मा कुमारीज में जाना है, तो हम वहां गए। तो वो 18 जनवरी का दिन था और सबका मौन था, दो संगलियां रखी हुई थी, लोग आधे आधे घंटे में बदल रहे थे, तो मौन था, तो किसी ने हमको पूछा नहीं, हम चुपचाप पीछे जाके बैठ गए, ब्रह्मा भोजन दोपहर में खाया और निकल गए, फ्री में मिल गया। और फिर लगा, फिर घर जाते थे, तो अभी हमारा थोड़ा रहम दिल था अपनी बहन के प्रति, ठीक है तुम जो मार्ग पे जा रही हो ना ये भी एक मार्ग है भगवान को पाने का, ऑल वेज लीड टू द सेम, लेट एवरी वन वर्शिप हिज ओन मैजेस्टी, विवेकानंद और ये सबको पढ़ के हार्मनी ऑफ रिलीजन, सारे धर्म एक तरफ ही जाते, रामकृष्ण परमहंस ने हर प्रकार की साधनाएं की और पाया सब मार्ग एक ही जगह जाते थे, तो हम कहते थे ठीक है यू आर ऑल्सो राइट, वो कहते नहीं हम ही राइट है, तो हम कहते तुम्हारी वजह से, संसार में जितने युद्ध हुए झगड़े हुए ना तुम्हारी वजह से हुए, इसी मानसिकता की वजह से, फैनाटिटिज्म कट्टरवादी था, पर वो कहती थी हम ही राइट है। फिर भी फिर वापस, तो उस मौन में और रोज की खोज और वो शाम को मठ में होने वाले अनुभव और अलग अलग सत्संगों में होने वाले अनुभव, अब दो मार्ग दिखने लगे, एक मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन करना, पेशेंट की सेवा करना, और दूसरा भगवान की खोज, ये सब कुछ छोड़कर इधर जाऊं या इधर जाऊं, टू वेज डाइवर्ज्ड इन द वुड्स एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। दो मार्ग थे, इधर या इधर। एक सत्संग में गए चिन्मय मिशन के, तो वहां जो सन्यासिनी बहने थी दो भगवे वस्त्र पहने, उनसे हमने बात की और उन्होंने एक ऐसी बात हमसे कह दी, यू हैव गॉट लॉट ऑफ मेडिकल वासनास। सर व्हाट, ये कौन सा नया शब्द है? उसने कहा ये जो तुम्हारी जो इच्छा है ना मेडिकल की, ये करूं वो करूं इनकी सेवा करूं, ये यही बाधा है तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति में, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत तो वहां से चालू होता है। उन्होंने किताबें चिन्मय स्वामी चिन्मय आनंद की ये पढ़ो, और फिर ऐसे ही विक्षिप्त अवस्था में दिन रात जैसे अब एक प्यास हृदय में आ गई कि वो कौन है और मैं क्या हूं, और वो ऐसी जबरदस्त प्यास थी कि बेचैनी थी बहुत। एक बार एक चर्च में गए और वहां से कुछ किताबें खरीदी और उस सिस्टर को कहा कि मुझे ये लेनी है, उसने कहा क्यों लेनी है? अब हमको पूरा याद नहीं, पर हमने जो उत्तर दिया था उसके बाद वो सुनकर उसने वो किताबें छीन ली और उन्होंने कहा कि यू आर बियॉन्ड दिस बुक्स, और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट अपीयर्स एज इफ यू आर गोइंग टू अचीव गॉड सून, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें भगवान अभी मिलने वाले हैं कुछ ही समय में। और वो किताबें उसने ले ली और फिर ये दो विजन इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। और फिर एक दूसरे सत्संग में हमने एक दिन सुना कि जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। उसी महाराज ने दूसरी बार कहा जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, और बस हमने डिसीजन ले लिया कि हमें मेडिकल प्रोफेशन छोड़ना है और हमको अब ईश्वर की खोज करनी है, प्राप्ति करनी है। उसी पीरियड में हम फिर से एक बार ब्रह्मा कुमारी केंद्र में गए और वहां पर एक बहन थी और वो एक दूसरा भाई था, वो कोर्स करना चालू था। तो हमने कहा उस बहन को, हम बैठे यहां पर, उसने कहा बैठो। तो वो समझा रही थी, कोर्स का बुक था, जीसस क्राइस्ट का चित्र था, गॉड इज वन। तो वो समझा रही थी, देखो जीसस क्राइस्ट ने कहा है गॉड इज वन। तो हमने कहा एक मिनट, कहां पर कहा? उसने कहा बाइबल में कहा। हमने कहा बाइबल में कहां पर, ओल्ड टेस्टामेंट में या न्यू टेस्टामेंट में? उसने कहा जीसस क्राइस्ट का जीवन किस में है? हमने कहा न्यू टेस्टामेंट। उसी में कहा, उसमें कहा, कहा हमने पूछा मार्क में कहा, मैथ्यू में कहा, ल्यूक में कहा कि जॉन में कहा? तो वो घबरा गई, उसने कहा दीदी से पूछ के बताऊंगी। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय होता है बड़ा रहमदिम, दयालु होता है, मक्खन जैसा। हमने कहा ठीक है ओके ओके, चलने दो जो चल रहा है। तो हमने उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहा, पर धीरे धीरे हमारी जो स्टेज थी इतनी पावरफुल थी, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि सर्व खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, मैं आत्मा, मैं ब्रह्म हूं, ये भाव इतना ज्यादा था। और फिर एक दिन हमने ये डिसीजन ले लिया कि हमको मेडिकल प्रोफेशन छोड़ना है और सन्यास लेना है। उस पीरियड में हमारा रिजल्ट भी आ गया था फाइनल एमबीबीएस का, उसमें हम टॉपर थे। उसी पीरियड में हमने ये डिसीजन लिया कि हमको मेडिकल प्रोफेशन छोड़ना है। और पर अब कहां जाए, तो हमने एक लिस्ट बनाई थी संस्थाओं की जहां जाना है, 50 संस्थाओं की लिस्ट बनाई थी, जिसमें ब्रह्मा कुमार इसको सबसे लास्ट में रखा था, क्योंकि हमने सेंटरों पर देखा था वहां केवल बहने हैं, हम वहां जाके क्या करेंगे, और हमको वो आने जाने वाला बिजनेस नहीं करना है, हम जाएंगे तो अंदर, पर यहां तो कहीं दिखता ही नहीं कोई, यहां तो खाली सिस्टर्स है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, उनका एक गुरु भाई था जो बार बार घर जाता था, कभी मां से मिलने, कभी बहन से मिलने, आश्रम से। उन्होंने कहा था आई डोंट वॉन्ट एम्बिग्यूअस टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज हु आर हाफ मंक्स एंड हाफ हाउस होल्डर्स, आउट, यहां से बाहर, एक तो इधर रहो या उधर रहो। और फिर हमने फाइनल किया ये सारी संस्थाओं में से, महानुभाव पंथ, निरंकारी और ये और वो अब याद नहीं, बहुत सारे थे। तो हमने फाइनल किया कि रामकृष्ण मठ में हम जाएंगे, और वहां पर हमने कभी किसी से कोई बात नहीं की, चुपचाप हम जाते थे, बैठते थे और आते थे, कभी किसी से कुछ पूछा नहीं। परंतु वो बहुत हमको सिंपल लगे, कोई अहंकार नहीं, कोई दंभ नहीं, सेवा इतनी थी पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। तो हमको लगा हम यहां जाएंगे, तो फाइनल डिसीजन ले लिया। और फिर एक दिन अपने भाई को बताया, उसको बताया कि हम संसार छोड़कर जा रहे हैं। उसने कहा व्हाट? उसको लगा हम पढ़ाई कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की। उसको कहा हमने, हम छोड़ के जा रहे हैं। उसने कहा जो भी करना है ना घर पे बता के करना। हमने कहा घर पे हम नहीं बताएंगे, क्योंकि सभी सत्संगों में हमने सुना है संसार से चुपचाप निकल जाना पड़ता है, जैसे महात्मा बुद्ध रातों रात निकल गए थे और हमें इस बात का इतना ज्यादा टेंशन था कि सब लोगों ने संसार छोड़ दिया, हम क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य, संत ज्ञानेश्वर, महात्मा बुद्ध, महावीर, ये सब संसार छोड़ के चले गए और हम अभी कितना 22 वर्ष के, 21-22 वर्ष के हो गए, अभी तक संसार में क्या कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने 21 साल की उम्र में सारा कार्य पूरा कर दिया और अभी तक चालू नहीं किया हमने, तो हमको लगा अभी तुरंत करना है जो करना है। तो भाई ने कहा घर पे बताओ, हमने कहा बिल्कुल नहीं, नो नेवर। फिर वो कहा प्लीज प्लीज बता के जाओ, नहीं तो मेरे ऊपर आ जाएगा सब। तो हमने कहा ठीक है, और फिर हम घर पहुंचे। हमको लगा कि घर पे ये जब बात हम बताएंगे तब विस्फोट होगा, पर महाविस्फोट होगा ये नहीं पता था। तो फिर हमने घर गए और घर पे बताया कि हम संन्यास ले रहे। उनको पहले तो यकीन ही नहीं आया। हमने कहा हम संसार को छोड़ रहे। तो जैसे हमने कहा कि हमको लगा, उनको तो शॉक लगा और ये लगा कि हमारे अपने मां बाप है, घर की बात घर में ही रहेगी, कहीं पर नहीं फैलेगी। पर उन्होंने देखते देखते सबको बताना चालू कर दिया। हमको समझाने के लिए लगभग 150 लोग आए अगले 1.5 महीने में। रोज कोई ना कोई आता था, रोज कोई ना कोई समझाता था, तुझा आहे तुझपाशी, कहां जा रहा है, अलग अलग रीति से अलग अलग ढंग से समझाने लगे। पर वो जितना जितना समझाते थे उतना ही और वैराग तीव्र होता था। कितनी सारी कुंडलियां निकाली गई, सत्यनारायण की पूजा हुई, आधीच सांगायला पाहिजे होतं, पहले बताना चाहिए था, एमबीबीएस केलंच नसतं। हातचा आलेला घास किसी ने छीन लिया, अभी हम खाने ही वाले थे। तो हमारी माता जी गणेश भक्त थी, तो उसने गणेश जी को पानी में डुबो दिया। बचपन से जो भक्ति की उसका ये परिणाम, महासंकट। आज तक ऐसा संकट पूरे खानदान में कभी नहीं आया, किसी ने ऐसा नहीं सोचा ना किया। तो उसको पानी में डुबो दिया एकदम से, जब तक संकट दूर नहीं होगा राहत ही तेज। कई लोग आने लगे रोज, कोई कोई अपनी बेटी को लेके आने लगे, ये एमबीबीएस कर रही है, तुम दोनों मिलके भक्ति भी करो, हॉस्पिटल भी खोलो और आश्रम भी चलाओ, जगह हम देंगे। साथ साथ होते रहेगा। रोज रोज नया नया, रोज रोज नया नया। हमारी बहुत सारी किताबें थी, हमारे पिताजी ने सब छुपा दी, अब तक पता नहीं कहां रखी है, किसी के घर में जाके रख दी सारी, इन किताबों के वजह से हुआ है। हमने कहा ये जो लोग हमको समझाने के लिए आ रहे हैं गृहस्थी, इनका बिल्कुल हम सुनने वाले नहीं है। हाँ अगर कोई सन्यासी आए तो शायद हम सुनेंगे। तो हमारे पिताजी ने एक ऐसे सन्यासी को ढूंढा जो पहले रामकृष्ण मठ में था, फिर उसको वहां से निकाल दिया गया, अब वो रामकृष्ण मठ के विरोध में प्रचार करता है। उसको ढूंढ के लाया हमको समझाने के लिए, और उसने अपने बहुमूल्य 3 दिन बिताए विथ नो रिजल्ट। पर हम पर कोई प्रभाव नहीं उसका। लास्ट में वो भी जाते जाते कह के, तुम जो कर रहे हो ना राइट है, चलने दो। ये तीसरा ही एक्सटेंडेड टर्निंग पॉइंट, एक पहले नागपुर में उधर मौन और इधर घर में, और अंदर से ऐसा वैराग, ऐसा वैराग, और जितना विरोध उतना वैराग और बढ़ रहा है, जितना विरोध और उतना वैराग और बढ़ रहा है। और मन की ऐसी अवस्था थी कि अब वो नहीं मिला तो नको देवराया अंत आता पाहु प्राणहा सर्वथा जाहु पाहे, प्राण निकल जाएंगे यदि वो ना मिला तो, ऐसी अवस्था में हम थे। हमारे माँ बाप कहते ये अच्छा पेक्षा तो किसी लड़की के साथ भाग गया होता तो अच्छा होता। पर ये नहीं चलत। वो विदर्भ में कहावत है गजानन महाराज है उधर, जैसे साई बाबा है, गजानन महाराज आना चाहिए पर बाजू के घर में जन्म लेना चाहिए, घर पे नहीं, नहीं तो वो सन्यासी बनता है। बाजू के घर में आए हम उसकी पूजा भक्ति करेंगे पर घर में नहीं जन्म लेना है कभी भी। तो फिर हम एक बार जबरदस्ती अपने पिताजी को लेकर रामकृष्ण मठ गए नागपुर, उन्होंने नहीं सुना। एक मास के बाद रोज रोज वही रोना धोना और वही रिश्तेदार समझाना। हमने इतना समझाया, शाम तक कभी कभी एक दो बार मान भी गए हम खुद तुमको कल छोड़ के आ जाएंगे, और रातों रात फिर बदल जाते थे, मोह इतना ज्यादा था। फिर पुणे लेके गए रामकृष्ण मठ में, नहीं माने। फिर हम अपने पिताजी को मुंबई लेकर आए, खार वेस्ट रामकृष्ण मठ है, मठ एंड मिशन। तो वहां पर मुंबई में रामकृष्ण मठ में हमारे पिताजी को जब हम लेके आए तो हमारे और हमारा और हमारे पिताजी का झगड़ा हो गया उसी मठ में। हमने कहा अब हम यहां से हिलेंगे नहीं, उन्होंने कहा मैं तुझे लेकर जाऊंगा। और वहां जो इंचार्ज थे स्वामी वागेशानंद, उनको हमारे पिताजी ने कहा इसको आप कैसे रख सकते हो, इसके नाम पर बैंक का लोन है, एमबीबीएस के लिए लोन लिया है, एक ही घर से तीन लोग एमबीबीएस, हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में, तीनों की अलग अलग खर्चा, तो लोन लिया था हमारी एमबीबीएस के लिए, वो कौन देगा, आपकी संस्था देगी क्या। साम दाम दंड भेद सब प्रयोग किए। तो पहली बार वहां पे एक वामन महाराज थे, शायद अभी भी होंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो, अगर तुम्हारा वैराग सत्य है तो जाएगा नहीं, दिस इज एन एसिड टेस्ट फॉर वैराग, व्हाई आर यू सो एजिटेटेड, काम डाउन, गिव देम देयर मनी एंड देन कम बैक, उनको उनके पैसे दो और फिर आ जाओ, तब कहीं जाकर हम थोड़े से शांत हुए, नहीं तो अब तक तो सुनने को तैयार ही नहीं थे किसी को भी। और फिर तुरंत हमारे पिताजी ने मेडिकल ऑफिसर की मुंबई से ऑर्डर निकाली और हम विदर्भ में एक वर्धा के पास आरवी नाम की एक जगह है वहां एज अ मेडिकल ऑफिसर 6 मास तक थे। जितने भी पैसे हर महीने सैलरी के आते थे सब कुछ बैंक में डालते गए, 6 महीने के अंदर बैंक का लोन चुकता हो गया। और उस 6 मास में अगला एक टर्निंग प्वाइंट आया फिर, और वहां पेशेंट्स इतने ज्यादा थे और हमारी सेवा की तो बहुत इच्छा थी, पर वो ऐसा हुआ वहां पर उस गांव में एक ही दिन में 300 पेशेंट्स की ओपीडी रहती थी, और जो भी आता था नए डॉक्टर को दिखाना है, नए डॉक्टर को दिखाना है, नए डॉक्टर को दिखाना है। तो हम बहुत फेमस हो गए वहां, छोटे गांव में तो कोई ऐसे सेवा करने वाला चला गया तो जल्दी फेमस हो जाता है, तो सब जगह इतने फेमस हो गए कि जो भी आता था नए डॉक्टर को दिखाना है, नए डॉक्टर को दिखाना है, इतना फेमस हो गया। और तुरंत हमको रियलाइजेशन हुआ कि ये जो पॉपुलैरिटी है ये भी माया है, भगवान की खोज में हमें इससे भी मुक्त होना है। और वहां जब हम सेवा कर रहे थे हमने एक खत लिखा था, पहली बार हमको एहसास हुआ कि गुरु चाहिए जीवन में, बिना गुरु के तो कुछ नहीं है। इतना सारा भक्ति का लिटरेचर, धीरे धीरे सारे उपनिषद पढ़ डाले, जितने उपनिषद से सारा कंपैरेटिव रिलीजन, हर धर्म का अभ्यास, ना केवल अभ्यास, उसमें जो लिखा है वो तुरंत हमको फॉलो करना है। तो ये सब करते हुए हमको पता चला कि गुरु चाहिए, तो हमने एक खत लिखा बेलूर हावड़ा हेडक्वार्टर्स रामकृष्ण मठ का, और वहां से खत भी आया कि आ जाओ। और हम चुपचाप बैठकर कॉमन बोगी में बैठकर बेलूर हावड़ा कोलकाता तक गए, 40 घंटे लगे थे, कुछ ना कुछ कारण से पहुंचते पहुंचते वहां हमारी मंत्र दीक्षा हुई और मंत्र दीक्षा के बाद हम वापस आए। स्वामी रंगनाथानंद थे उस समय, 94 उनकी उम्र थी, विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी शिवानंद के जो शिष्य थे। तो उस पीरियड में हमने भगवान की एक नए रूप में पूजा की, आराधना की, और हम वैसी पूजा नहीं करते थे पर जैसे बाकी लोग कहते थे पूजा और वो सब नहीं था, प्रेम केवल। तो उस गांव में हमने एक नई भक्ति की, भगवान गॉड एज मदर, जैसे श्री रामकृष्ण ने की थी मां 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 मां, वैसी ही पूजा, वैसी ही आराधना कि जो हम कर रहे हैं मां मां मां, भगवान एज मदर। और वहां पर फिर 6 मास पूरे हुए, हमने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, हमको अब जाना है। और हमारे पिताजी पहले ही सारे ऑफिसेस में चले गए, इसका रेजिग्नेशन लेटर मत लेना, ही इज चीटिंग द मेडिकल प्रोफेशन। वहां पर भी बता दिया। उस गांव में भी हमारे मां बाप एक बार आए थे दोनों, और जो रिक्शा वाला उनको लेके आया था उसने कहा आते आते एक नया डॉक्टर आया है, उसने ना मुझे ठीक कर दिया। और जैसे ही गेट पर आए हॉस्पिटल के, उन्होंने उस रिक्शा वाले ने कहा यही वो डॉक्टर है। तो इनका तो मोह और बढ़ गया, अब ये जा रहा है क्योंकि। तो मैं तो हम चाहते थे कि उस गांव में किसी को पता ना चले, पर धीरे धीरे हमारे मां बाप के आ गए वहां 4 दिन के लिए, सबको पता दिया। तो जो भी मिलता था साहेब रुक जाओ ना, तो हमको इतना क्रोध आता था इसको किसने बताया। और जब घर पे थे और एक ही बार ऐसा क्रोध किया था, शायद वो पहला और जीवन का अंतिम क्रोध होगा, कि वो जो हाथ में हमने वो एक सब्बल थी लोह की वो ही उठा दी, क्योंकि रोज नए नए लोग समझाने आ रहे। हमने कहा अगर मुझे किसी ने रोका तो मार दूंगा उसको, मेरे मार्ग में नहीं आना बिल्कुल। वो फर्स्ट एंड द लास्ट एंगर ऑफ लाइफ, क्योंकि इतना समझाने के बाद फिर भी रोज किसी ना किसी को लेके ही आ जाते थे, नई नई भविष्यवाणियां करते थे, ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा ऐसा वैसा। रेजिग्नेशन लेटर दिया, फिर घर आए। घर आए तो रोना धोना चालू। हमारी माताजी ने कहा जर तू गिलास, सामने जो कुआं दिख रहा है ना उसमें कूद जाऊंगी। हमने कहा आप भी क्या, भी कूद जाओ राइट नाउ। हमारे पिताजी ने 6 पेज का लेटर लिखा था टू अटल बिहारी वाजपेयी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माय सन हैज बीन हिप्नोटाइज्ड बाय रामकृष्ण मठ एंड मिशन। ये उसकी शुरुआत थी लेटर की, 6 पेज का लेटर था। हमको 6 अलग अलग लेटर्स आए अज्ञात अननोन नेम से, कि जिसमें लिखा था कि मैं रामकृष्ण मठ का एक सन्यासी बोल रहा हूं, मैं भी डॉक्टर था, मैं यहां आया अब पछता रहा हूं, तुम मत आना। किसने लिखे पता नहीं। बहुत सारा उसमें लिखा मुझे एड्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं बहुत होशियार था, मेरे नाम के आर्टिकल्स ये लोगों ने अपने नाम पर पब्लिश किए, वगैरह वगैरह वगैरह। पर इसका हम पर कोई असर नहीं था, दोष उसी व्यक्ति में होगा, not in the principle, the fault is in the individuals, not the principles. ये उसी व्यक्ति की अपनी कमजोरी होगी। और ये सब करते करते finally एक प्रश्न था, रामकृष्ण मठ में तो जाना है पर उसमें भी कहां जाऊं, उसकी भी इतनी सारी ब्रांचेस है। वहां एक डॉक्टर मिले, पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कहा कि तुम राइट कर रहे हो और जो कर रहे हो मैं भी करना चाहता था, मैं नहीं कर पा रहा तुम तो जरूर करना। और उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया साउथ का, नेट्रमपल्ली, यहां जाओ, यहां जाकर संन्यास लो। तो हम घर से निकले और वेल्लोर पहुंचे, पैसे थे नहीं, कैसे तो भी जमा करके, सब तो लोन के दे दिए थे, और फिर वहां से वो नेट्रमपल्ली करके एक छोटा गांव है, 6 घंटे लग गए। वहां लोगों को ना इंग्लिश आती थी ना हिंदी, केवल तमिल। तो वहां पर वो आश्रम में 4 दिन हम रुके, और उस आश्रम में बहुत सारे सन्यासी ब्रह्मचारी थे जो अभी सन्यासी बने नहीं थे, तो उनके साथ रहे। उन्होंने कहा तुम उस महाराज से मिलके आओ, एक पहाड़ी पर एक महाराज तपस्या कर रहे हैं। हम उनके पास गए, उनके पास 1 दिन रुके, और उनको हमने कहा कि हमारे पिताजी कहते हैं हमारे हाथ में तो संन्यास लिखा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या लिखा है? हमने कहा कुंडली में लिखा है यह सत्यवादी हो गया। उन्होंने कहा बस जाकर अपने पिताजी को बोल दो कि वह सन्यासी ही सत्यवादी हो सकता है, गृहस्थी कभी सत्यवादी नहीं हो सकते। तो फिर और उन्होंने कहा तुम यहां मत ज्वाइन करो, तुम चेन्नई जाओ, चेन्नई जाके ज्वाइन करो। तो हम वहां से चेन्नई गए मायलापुर, वहां पे 7 दिन रहे, और वहां पर हमारे पिताजी का फोन आया वहां के, और हमको कहा कि तुमने जो जॉब छोड़ दिया 6 मास में वो गवर्नमेंट जॉब है, उसमें बॉन्ड है 2 साल का, नहीं तो 2 लाख रुपए भरो। 2 लाख हम कहां से लाए, वो गवर्नमेंट का बॉन्ड है। और वहां पे और एक मजेदार बात हुई, हम जिस कमरे में रुके थे उस आश्रम में, तो हमारे साथ एक दूसरा कुमार भी आया था हमारे जैसा वैरागी, तो उसने वो भी संन्यास लेने आया था। हम दोनों एक ही कमरे में थे, और 2 दिन के बाद उसके माँ बाप आ गए उसको लेने के लिए, और उसके माँ बाप ने कहा कि हमारा बेटा ना एक लड़की से शादी करना चाहता था, हमने मना कर दिया इसलिए यहां आ गया संन्यास लेने, अब हम मान गए हमारा बेटा हमको वापस दो, और वो चला गया। हम तो शॉक हो गए एकदम, और सोचा कि अभी ये यहां वाले लोग ये भी सोचेंगे हम भी ऐसे आए, तो वो तो आंखों के सामने से चला गया एकदम। तो फिर हमने सोचा, गौतमानंद स्वामी से मिले जो हेड थे उस समय, उन्होंने कहा ऐसा कोई, देखो आर्मी में भी बॉन्ड होता है, अगर वहां किसी को वैराग आ गया थोड़ी ना बॉन्ड कंप्लीट करते बैठेगा। तो हमने अपनी बैग वहीं रखी, अभी भी रखी है, कोई जाए तो लेके आना। तो वो बैग वहां रखी और उनसे कहा हम आ रहे हैं। ये बात है 2003 नवंबर की, और हम घर वापस आए, रोना धोना सब चालू था। फिर हमारी बहन थी वहां, वो कहती थी तुम्हारा तमो प्रधान संन्यास है, हम कहते तुम्हारा सतो प्रधान है। तो उसने मुझे जबरदस्ती एक माता के घर लेके गई, उसने कहा एक माता है वो ना तुम्हारे लिए योग कर रही है मेडिटेशन। मैं बोला अच्छा मेरे लिए, किस लिए? वो मुझे रोकने के लिए योग कर रही थी, गीता पाठशाला चलाने वाली एक माता। और फिर हमारी बहन उसके पास लेके गई, तो उस माता ने हमको ऐसे टेबल के उस ओर सामने बिठाया, और पावरफुल दृष्टि दी 10 मिनट, हमने भी उसको बहुत पावरफुल दृष्टि दी, अहम ब्रह्मस्मि सर्व खलविदम ब्रह्म तत्वमसि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, हमारी दृष्टि ऐसी टकराई होगी दोनों की। फिर हम घर वापस, और फिर हमने फाइनल डिसीजन ले लिया, इस संसार की सारी संस्थाएं हो गई, सारा लिटरेचर हो गया, सारी बुक्स हो गई, एक बाकी था सत्य साई बाबा से मिलना। तो वो हमने सोचा था चेन्नई जाते जाते बीच में पुट्टाभर्ती आएगा, वहां उतरेंगे और सत्य साई बाबा से मिलके फिर उधर जाएंगे फाइनल। तो हमारी बहन ने कहा तुम माउंट आबू से होते होते जाओ। हमने कहा ठीक है, पर मुझे सारे नियम पता है तुम्हारे, 1 साल, और मैं तुम्हारे किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता। तो हमारी बहन ने कहा तुम्हें किसी भी नियम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसा वैराग हमारे सेंटर में भी किसी में नहीं है। हमने कहा देखा, अपने ओर लेके जाने के लिए मेरी तारीफ। पर उसने कहा कि मेरे साथ सेंटर चलो। हमने कहा चलो, पर उसने कहा कि एक बात तुमसे पूछेंगे, कब से ज्ञान में हो तो कहना 1 साल। हमने कहा झूठ, क्योंकि अपनी हमारी बहन का हमने बहुत झूठ देखा था, जब भी हम घर आते थे और किसी रिश्तेदार के यहां जाते थे और उसको कहते थे भोजन, तो वो कहती थी मेरे पेट में दर्द है। हम कहते थे पेट में दर्द कैसे चालू हो गया तुम्हारे अभी के अभी। किसी को कहती थी अभी अभी घर से खाना खा के आ रही, तो मैं कहता था झूठ, वो कहती थी युक्ति युक्त। वॉट इज युक्ति युक्त एंड वॉट इज झूठ। तो फिर वो हमने कहा ठीक है चलो, मान लिया। और हम सेंटर पहुंचे, पुष्पा रानी दीदी जिन्होंने अभी कुछ समय पहले शरीर छोड़ दिया, नागपुर वसंत नगर सेंटर, वो दीदी बैठे थे और बहुत सारी बहनें बैठी थी। तो हमारी बहन ने कहा ये मेरा भाई है, इसको भी मधुबन जाना है, बाबा 30 तारीख को आ रहे थे, ये 24 तारीख या 25 की बात होगी। तो दीदी ने कहा कौन से सेंटर, कब से ज्ञान में हो? तो हमने कहा एक साल। हमने तो अपनी बहन को ये भी कहा था, हम तो सब खाते हैं श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु, अर्पण करो और खा लो। अच्छा, तो उसने कहा कौन सा सेंटर? अब ये तो बहन ने बताया नहीं सेंटर कौन सा बताना है, तो हमने कह दिया अमरावती सेंटर। तो तुरंत उन्होंने फोन लगाया सीता दीदी को, तो सीता दीदी ने कहा नीलम तो आती थी, इसका भाई तो कभी नहीं आया। तो हमने कहा वो जो हम जो मेडिकल ऑफिसर थे ना आरवी छोटा सा गांव, वहां मतलब कभी कभी ऐसे बोला, एक बार गए भी थे ऐसे ही। तो दीदी ने कहा अच्छा, और हमने कहा वहां पर फोन बंद है। तो दीदी तो एकदम चुप हो गए, तो अब क्या करें? दीदी ने कहा ठीक है जाओ, पर कैसे जाओगे, सब तो रिजर्वेशन हो गया है। हमने अपने मन में कहा कि हमें किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, सारा भारत हम वो रेल में नीचे पेपर डालकर हम ट्रेवल किया है, दिल्ली चेन्नई कोलकाता मुंबई भगवान की खोज में। उन्होंने कहा ठीक है। तो दूसरा दिन सारी रिजर्वेशन पार्टी उधर बैठी, सारी पार्टी रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में, हम इधर कॉमन बुगी में बैठ गए। हमारी बहन आई छोड़ने के लिए और हम निकल पड़े। उस बहन को पता था एक डॉक्टर साथ में है बस, और हमको बताया ये बहन साथ में है। ट्रेन चालू हुई और हम सोच रहे थे अभी हमको भागवत का 7वां अध्याय पढ़ना बाकी है और श्रीधर स्वामी की कमेंट्री बाकी है और ब्रह्मसूत्र पढ़ना बाकी है और फिर ज्ञानेश्वरी का वो उसका वो विवेचन पढ़ना बाकी है। अभी कितना काम रहा हुआ है, भगवान ऐसे थोड़ी मिलता है, ये सब पढ़ना पड़ता है और फिर मिलता है, और संसार का त्याग करना पड़ता है फिर मिलता है। तो एक तरफ तो ये पढ़ाई थी, दूसरी तरफ वैराग था, और वो वैराग भी ऐसा वैराग था कि कुछ भी नहीं चाहिए यहां का, नथिंग। हमको याद है एक बार तो हम अपने घर से निकल पड़े थे, कुछ नहीं, तुम्हारे कपड़े भी नहीं चाहिए, तुम्हारी चप्पल शूज कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे, ऐसा अवस्था आ गई थी। वो हमारे सारे MBBS के सारे सर्टिफिकेट्स, हमने सोचा उसको जला देंगे ताकि वापस कोई मोह ना हो जाने का मेडिकल प्रोफेशन में। तो हमारे पिताजी ने फटाफट सब छिपा दिए, और उसी बीच में हमने जो एंट्रेंस एग्जाम दी थी उसका भी रिजल्ट आ गया, उसमें भी हमारी औरंगाबाद में MD के लिए एडमिशन हो रही थी, हमने गवर्नमेंट की सीट छोड़ दी। और हमारा जो दूर का एक भाई था उसने MD के लिए एडमिशन ली थी 30 लाख रुपए देकर, इसलिए वजह से हमारे घर में दुख ज्यादा था, इधर इकड़े फ्री मदे भेटते हैं और उधर पैसे लेके रिश्तेदार एडमिशन ले रहे, कितना बड़ा दुर्भाग्य, पता नहीं कौन से पाप कर दिए। गणपति अभी भी पानी में ही है। हमारी ट्रेन की बोगी में दो माताएं बैठी थी महाराष्ट्र की, एकदम गरीब किसी गांव की, कपड़ों से तो लगता था बिल्कुल ही अनपढ़ है। और हम बैठे थे, इतनी भीड़ थी उस कंपार्टमेंट में, जगह नहीं थी, तो हम तो बस ऐसे बीच में सो रहे थे। और एकदम से हमारा ध्यान आकर्षित हुआ, एक माता ने कहा मेरे मन में संकल्प आ रहा है। हमने कहा संकल्प, ये शब्द तो संकल्प मतलब प्रण प्रतिज्ञा, ये कह रही मन में संकल्प आ रहा है मतलब विचार, विचार के लिए संकल्प शब्द का प्रयोग किया। हमने कहा ठीक है चलो छोड़ो। फिर वो कहने लगी इंग्लिश भाषा, ऐसा लगता नहीं है उनको देखकर इनको इंग्लिश आती होगी, वो कहने लगी ड्रामा वंडरफुल है। तो वो थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर इनकी बाकी भाषा से तो लगता है ये बिल्कुल गांव की है, पर वो इंग्लिश शब्द का उच्चारण एकदम परफेक्ट। फिर थोड़ी देर के बाद सुना एक दूसरी माता बोल रही थी, हाँ उस आत्मा का कल्याण हो जाना चाहिए। आत्मा, हमने सोचा इन्होंने उपनिषद पढ़े हैं क्या। तो उन दो माताओं के साथ हम मधुबन पहुंचे, उनकी बातें सुनते सुनते यहां वहां की वो जो भी चर्चा कर रही थी आपस में। अहमदाबाद ट्रेन चेंज मधुबन गेट नंबर 2 शांतिवन, बस एंड अंदर आई और हम उतरे और उतरते ही डेजावू। इंग्लिश में साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं डेजावू। डेजावू अर्थात ऑलरेडी सीन, ऐसे लगना कि ये सब मैंने देखा हुआ है। ऐसे लगने लगा ये तो मुझे पता है, यहां ये है यहां ये है, ये मेरा देखा हुआ है। पर फिर हमने अपने मन को समझाया हिप्नोसिस हो सकता है, संस्थाओं में बड़ी जगह पर ये सब चीजें होती है, परंतु हम अपने रास्ते में बिल्कुल पुट्टपर्ती और फिर चेन्नई फाइनल है, उसको कोई टच नहीं कर सकता चाहे कोई कुछ भी करे। तो वहां उतरे, फिर दूसरे हमको कमरा मिला एक शांतिवन में, हमारे साथ चार भाई थे। रात में हम सो गए और रात में एक स्वप्न देखा, उस स्वप्न में हमने देखा लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, जो चित्र है हमारा वो वाला चित्र, और वो बहुत लाइव रूप में दिखा हमको। फिर दूसरे दिन हम उठे और फिर अपना हमको बहुत सारा करना रहता, राम रक्षा हनुमान चालीसा मंत्र जाप। तो हम कह रहे थे ये भाई लोग आए यहां से तो हम अपना चालू करें, तो वो 7 बजे निकल गए मुरली के लिए, तब कहीं शांति हुई और हम बैठे और सब करने लगे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, न हनुमान चालीसा न राम रक्षा न कुछ नहीं, जो हमको तो सब पता था पर याद आज कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ कुछ होने लगा तो फिर हमने किताब खोलकर उसको पूरा किया और फिर सुबह से लेकर रात तक हम भटकते रहे। अब वो पार्टी कहां चली गई पता ही नहीं, वो जो बहन लेके आई थी वो पता नहीं कहां चली गई, और हम भटकते रहे शांतिवन, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, और भटकते भटकते शाम हो गई और अचानक गीत बजा, अरे शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। और जैसे ही वो गीत बजा हम एकदम खड़े के खड़े रह गए और लगा ये गीत तो हमने लाखों बार हजारों बार सुना है। कल्प पहले की जैसी स्मृति है जाग उठी और हमने देखा ये सब लोग रुक क्यों गए, ये कौन सी अवस्था है, क्या ये महासमाधि की अवस्था है, भाव समाधि की अवस्था है, जिस समाधि में वो सेंट राबिया वो फ्रांसिस डी सेल्स वो सेंट जेवियर और जो रामकृष्ण परमहंस जाते थे, ये सब कौन है जो एकदम से स्थिर हो गए। बाबा 30 को आने वाले थे, 29 तारीख को वो बहन मिली जो हमको लेके आई थी, उन्हें कहा अरे भाई तुम हो कहां। हमने कहा यही है, पर हम एक गंभीर अवस्था में थे, हंसना तो हमने छूट गया था हमसे, बाल वगैरह पूरी तैयारी हो चुकी थी, तो हमने कुछ बात नहीं की। तो उस बहन को लगा शायद मौन है, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई थी बाबा के 2 दिन पहले मौन रखना है, तो उसको लगा इसका मौन चालू है, हमारा कुछ और ही मौन चालू था, दूसरा मौन चालू था। और फिर 30 तारीख हमारी बहन ने कहा था हिंदी में मुरली चलेगी, और सुबह हमने अनाउंसमेंट सुनी कि 3 बजे वहां पर गेट खुल जाएंगे। तो हम 3 बजे वहां जाके बैठ गए। हमें क्या पता 3 बजे नहीं जाना पड़ता है, लेट जाना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा ज्ञान तो बाद में आया ना और स्मार्ट बनने का। तो हम वहां जाके बैठ गए उस हॉल में 3 बजे, और 3 बजे से बैठे रहे रात को 11 बजे तक, और रोने लगे और आंसू बहने लगे। समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। ऐसा लगा वो हॉल में कोई है ही नहीं, और वो स्टेज पर हमने जो कुछ पढ़ा था वो सब कुछ वहां दिखाई देने लगा। तुलसीदास, मीरा, गुरु नानक, राबिया, सेंट जॉन, सेंट बर्नार्ड, वो जैसे वहां है घूम रहे। और फिर बाबा आए, आपको पता नहीं कौन आने वाला है और कैसे आने वाला है। हम तो वहां बैठे रहे और आंसू बहने लगे। ऐसे आंसू आने लगे कि समझ नहीं आ रहा था। हम कभी रोते नहीं, भगवान के प्रेम के अतिरिक्त आज तक कभी भी किसी मनुष्य के लिए आंसू नहीं बहे। वो भूमि वैराग्य की थी। हमको ये भी याद आ रहा था कि हमने अपने पिताजी से भी कहा था कि यदि मुझे भगवान नहीं मिले तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। वो अवस्था थी। वहां बैठ के हम रोने लगे और उस स्टेज पर एक जैसे प्रकाश था, और वो प्रकाश हमसे कह रहा था कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। पूरा जो संघर्ष था, 9 मास का संघर्ष था, हम अकेले थे और सारा संसार एक तरफ, और हर दिन तड़प रहे थे। हमको याद है बीच में 3 दिन ऐसे आए थे उस खोज में कि जो मीरा की अवस्था थी, भोजन भवन भलो नहीं लागे, मीरा की जो अवस्था थी उसी अवस्था में हम थे 3 दिन और 3 रात, रोते हुए, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहां है। भोजन नहीं, कुछ नहीं, बिस्तर पर पड़े, कभी नीचे पड़े, कभी उस मेडिकल कॉलेज के कैंपस में, कभी उस छत पे। प्रभु विरह, पर ये संसार के लोग थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था हमको क्या हो रहा है। उनको लग रहा था किताब पढ़ने की वजह से हुआ है। हम तड़प रहे थे अंदर से, और वह ऐसी तड़प थी कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हम उस हॉल में बैठे थे और आंसू बह रहे थे, और उधर से आवाज आने लगी थी, मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्ति मूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्तित। हे अर्जुन, इस संसार का आदि मध्य अंत मैं हूं। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। कम यू ऑल ई दैट लेबर एंड आई शैल गिव द रेस्ट। सब मेरी तरफ आ जाओ, मैं हूं। आई थाय लॉर्ड थाय गॉड। और हम वहां बैठे थे और आंसू बह रहे थे। बाबा आए और चले गए। हमको नहीं पता कौन आया था, हम तो बैठे थे। जब होश आया तो देखा हॉल खाली है, वो भाई आएगा चलो उठो, चेयर उठाने आए थे। तब हमने अपने आप को छुपाया कोई देख न ले, पर जब देखा तो कोई था ही नहीं वहां। जब बैठे थे और बीच में देखा था तो हॉल फुल था, पर अब सब चले गए थे। उन्होंने कहा अरे उठो, कहां क्यों बैठे हो अब तक, बाबा चले गए। तो हमने कमरे में गए और हम सोए, पहली बार सोए नौ मास के बाद। मजची मित्र व्यालो आपुली अपोटी आलो, स्वयं के गर्भ से स्वयं का जन्म हुआ। तुलसीदास ने लिखा है पावा परम विश्रामा, परम विश्राम को प्राप्त हुई चेतना। हम सुबह उठे तो बहनों ने कहा चलो साइट सींग, हमको कोई साइट सींग नहीं जाना है, यही हमको जो मिलना था मिल गया। और वो हमको जबरदस्ती लेके गई, घुमाने लगी, ये पांडव भवन, ये ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल के पास में आई, कहा ये हमारा हॉस्पिटल है। उसको देखकर हमको याद आया हम डॉक्टर है। जब वो हॉस्पिटल देखा और हमने कहा अभी के अभी हमको इस हॉस्पिटल में ज्वाइन करना है, अभी के अभी राइट नाउ। हम अंदर गए, बस बाहर खड़ी थी और ढूंढने लगे हु इज द इंचार्ज, और सीधा डॉक्टर प्रताप के केबिन में गए और कहा कि हमको अभी के अभी ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा आप कौन हो? तो हमने बताया कौन सा सेंटर, हमारा सेंटर है ही नहीं, कौन सा सेंटर बताऊं। तो उन्होंने कहा ऐसे ही कहा कि चलो ठीक है एक लेटर लेके आ जाना। अब लेटर हम कहां से लाए? तो हम नीचे आए, पुष्पा रानी दीदी ने कहा दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम है 2003 में, दिसंबर में था, नवंबर दिसंबर नवंबर कुछ, तो मैं जा रही हूं, सारी पार्टी को तुम ले जाओ। उनको लगा ये बहुत ही पुराना कुमार है एक, वो 60 लोग थे सारे बूढ़े बूढ़े, उन सबको लेके हम घर पहुंचे, फिर अपने लौकिक घर पहुंचे और कहा संन्यास कैंसल। तो गणपति पानी से सबसे पहले बाहर निकला, आखिर संकट दूर हुआ। पर हमने कहा कि हम ग्लोबल हॉस्पिटल जा रहे हैं। माता जी ने कहा ठीक है जा जा चलते, पर सन्यासी नहीं बगू शकत, सन्यासी के वस्त्रों में तुमको नहीं देख सकते, कम से कम डॉक्टर के वस्त्र तो रहेंगे, जा जा। तो फिर 15 दिसंबर 2003 हम ग्लोबल हॉस्पिटल आए और वहां पर 1.5 साल तक रहे। हमारा पहला ही दिन था हॉस्पिटल का, हमार और दादी जानकी आई, रामनाथ भाई एडमिट थे, रामनाथ भाई जी, उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो दादी ने देखा और हम वहीं थे, तो डॉक्टर प्रताप ने कहा ये ना हमारे नए डॉक्टर है। तो दादी ने कहा अच्छा मियां हाथ रखा, ये है सच्चा सच्चा राज ऋषि। दादी ने वरदान दिया। फिर दूसरा दिन हमने पूछा यहां मुरली होती है ना, तो वहां के डॉक्टर ने कहा अरे ये हेडक्वार्टर है, यहीं से तो सब जगह जाती है, तो आप कितने बजे जाते हो? उन्होंने कहा हम 3:30 बजे। हमने कहा हम भी आएंगे आपके साथ। तो दूसरे दिन 3:30 बजे अमृत वेला। कुछ लोगों को पता चला कोई लोग 3 बजे जाते हैं, फिर धीरे धीरे पता चला कोई लोग तो 2:30 बजे जाते हैं, कोई 2 बजे जाते हैं, कोई तो 1:30 बजे जाते हैं और 1-2 बजे पहुंचते हैं। वो 2-3 दिनों में ही फिर हमारा 2 बजे चालू हो गया। पहला दिन ओम शांति भवन में एकदम सामने जाके बैठ गए, दादी प्रकाश में नहीं यहां थी, और मुरली चालू हुई। मीठे बच्चे अब तक जो सुना है भूल जाओ। तो हमने पीछे देखा किसको कह रहे हैं, हमको तो नहीं कह रही। और सबसे हमने एक प्रश्न पूछा जिसका किसी को उत्तर, हमने कहा ये जगदीश चंद्र कौन है, हमको इससे मिलना है, इससे हम डिबेट करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, क्योंकि सब किताबों में उसका नाम है। तो पहले तो कई लोगों ने कहा हमको नहीं पता कौन जगदीश चंद्र, फिर किसी ने कहा जगदीश भाई जी, अरे उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया। तो ये सबसे पहला दुख हमको हुआ था। और फिर हम हॉस्पिटल में थे और हमको गांव की सेवा मिली थी वहां पर, एक हॉस्पिटल घूमता फिरता दवाखाना। और एक रात जगदीश भाई जी हमारे स्वप्न में आए थे और उन्होंने हमको एक सर्टिफिकेट दिया था और जिसमें उन्होंने साइन किया था सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन कि तुम जो सेवा कर रहे हो और करोगे उसके लिए वो एक सर्टिफिकेट था। हमको उस समय जो भी सैलरी मिलती थी हॉस्पिटल से, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, वो किताब हमको पढ़नी थी, क्योंकि हृदय तो कन्विंस हो गया था, बट व्हाट अबाउट इंटेलेक्ट? वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट वेदांत, शास्त्र, फिलोसॉफीज, षडशास्त्र, न्यायशास्त्र, उसका और ब्रह्मा कुमारीज की फिलोसॉफी का कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर धीरे धीरे जैसे ही पहली हमको सैलरी वहां मिली थी, 69 से लेकर तो 2003 तक की सारी मुरलियां सबसे पहले खरीदी क्योंकि लेट एडमिशन हुई है। फिर सबने कहा तुम ना पीजी करो फिर आओ। फिर हम फिर से एंट्रेंस एग्जाम दी बिना पढ़ाई किए, फिर से हमारा नंबर लगा, हम वापस आए मिरज सांगली, वहां पर रहे, फिर मुंबई आए। मुंबई में 3 साल रहे, 3 साढ़े 3 साल, बीएसएस हॉस्पिटल, हिंदुजा हॉस्पिटल और बहुत सारे बीच के हॉस्पिटल यहां वहां। और इसमें भी और एक घटना हुई बीच में, यहां आने के बाद मिरज सांगली में थे, फिर से रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, क्योंकि अब हमको मधुबन से दूर रहना मतलब बहुत मुश्किल हो गया। 6 महीने के अंदर हमने कहा हमको नहीं चाहिए ये पीजी, हम जा रहे हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी आए थे अपने बेटे के एडमिशन कराने राहुल की, तो उन्होंने कहा रुको रुको। फिर मोहिनी दीदी के द्वारा हमारे लिए संदेश आया था वतन से, व्यक्तिगत संदेश, जिसमें बाबा ने कहा था बच्चा जो कर रहा है वो करे, बाप में क्या करना है बाप बतलाएंगे। तो रेजिग्नेशन लेटर वापस लिया और पीजी पूरी की। फिर मुंबई आए, यहां थे, और यहां से फिर एट द लास्ट 2010 यूथ रिट्रीट थी मधुबन में। यहां पर दिन रात, क्योंकि अभी हमारे पास एक लक्ष्य था कि हमको मधुबन वापस जाना है, 18-18 घंटे हॉस्पिटल में काम करते थे। क्यों? क्योंकि हमको वापस ग्लोबल हॉस्पिटल जाना है और सब कुछ सीख कर जाना है। तो वहां हम 2010 में नीचे गए, शांतिवन में आए थे। अब ये संकल्प नहीं था कि तुरंत ज्वाइन करना है हॉस्पिटल, पर एक फिल्म का गीत सुना, अच्छा गीत था, ये जो देश है तेरा तुझको है पुकारा, सब तो पा लिया अब है क्या कमी, यू तो सारे सुख है भर से पर दूर तू है अपने घर से, आ लौट चल ए दीवाने यही देश, ये जो देश है तेरा तुझे है पुकारा। वो गीत ऐसा था कि हमको लगा बस टॉप, 10 तारीख अक्टूबर मास 2010 हम ग्लोबल हॉस्पिटल में आ गए। तब से लेकर अब तक वही है और अभी आपकी सेवा में उपस्थित है। ओम शांति।
ओहो प्रभु, तेरी लीला अप्रमापार है। जो शब्द अभी मन में आ रहे हैं, आज समझ में आ रहा है जो बाबा कहते हैं, बच्चे आप कोटों में कोई, कोई में भी कोई हो। नौदा भक्ति के बारे में मुरली में सुनते हैं, कभी देखी नहीं थी, ऐसा कोई देखा नहीं था। बाबा कहता था कि गले में तलवार रख देते हैं, कहते नहीं मिला ना अभी गला काट देंगे, कभी देखा नहीं था। बाबा ने आज उसका भी दर्शन करा दिया। आपका जन्म तो वरदानी भूमि में बाबा की दृष्टि से ही होना था, क्योंकि बुद्धिवानों का बुद्धिवानी है। ये बात मुझे कई बार लगती थी कि ऐसे बुद्धिशाली आत्मा की बुद्धि तो वही खोल सकता है, लेकिन आज जब मैं अनुभव सुन रही थी तो मुझे एक बात बहुत समझ में आई। कहा कि उन घंटों में, जो शब्द मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कहा कि हृदय तो सैटिस्फाई हो गया था लेकिन बुद्धि अभी भी सब पढ़ना बाकी था, उसकी समझ बाकी थी। बाबा हृदय से तीर लगाता है। बुद्धिवानों का भी पहले हृदय घायल करता है, भावना का भूखा है, भावना से अपना बना लेता है। ये तो समझ में आया कि आपका जन्म स्वयं भगवान की दृष्टि से हुआ, पर ऐसा जरूर लगता है कि आपकी दृष्टि से अनेकों का जन्म होने वाला है। दृष्टि, बोल और कर्म से अनेकों को लाभ मिलने वाला है। मैंने पहली बार जब अनुभव सुना था, इतना एकाग्रता से नहीं सुना था, कहीं कार्य करते करते YouTube पर सुना था। सबने कहा था, चारू बहन आदि ने, बहन सुनना सुनना, उन्होंने मुझे WhatsApp पर भेजा था, मैंने सुना था। और कई दिनों तक मुझे अमृत वेले वो अनुभव याद आ जाता था, घर बैठे भगवान ने ढूंढ लिया, हम क्यों वैल्यू नहीं करते। कहानी सुनते थे तो ऐसा लगता था हमें तो घर बैठे ढूंढ लिया। कितनों को घर बैठे ढूंढा, हाथ खड़ा करना। आप देखो ये तड़प, हमने तो ऐसी कोई तड़प नहीं करी और उसने घर बैठे ढूंढ लिया। अमृत वेले याद करना, वो वैल्यू कम नहीं हो जाए कि हम वो कोटों में कोई है और वो हमसे महान कार्य करा रहा है, और हम ऐसा नहीं उसको साधारण रीति से ले ले, हमको स्मृति रहे कि कौन मिला है, कौन सा समय है और उसको हमारे से क्या कराना है। तो इस अनुभव को, ये भाई का अनुभव हमारे लिए तीव्र पुरुषार्थ का एक आधार बन जाए, ऐसा लगता है? किस किस को लगता है कि भाई का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ के निमित्त बन जाए? इसलिए खास हमने भाई को कहा, आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना। मैंने सुना था तीव्र पुरुषार्थ हुआ, ऐसा लगा बहुत समय कम है, एक बार भी सिलेबस नहीं पढ़ा है। तो बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद कि ऐसा सच्चा सच्चा राज ऋषि से मिलने का भाग्य हमको मिला है। बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद।